नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप किया है उसका दंड उन्हें अवश्य ही मिलेगा। विपक्ष ने संसद और राज्य विधानसभाओं में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया और उसे पास नहीं होने दिया। कल शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। जो दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वे देश की महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में बढ़ती भागीदारी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि देश की समस्त नारी शक्ति का आशीर्वाद उनकी सरकार के साथ है।
संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया उनसे मैं दो टूक कहूंगा, ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि वंशवादी दलों का डर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध का मुख्य कारण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है और ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सहित सभी क्षेत्रों में संतुलित सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अफवाह फैलाई कि परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, लेकिन उनकी सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं होगी और राज्य में सीटें आनुपातिक रूप से बढ़ेंगी, जिससे प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कोलंबो रवाना हो गए हैं। ये यात्रा किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की द्वीप राष्ट्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ये यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। श्री राधाकृष्णन श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूर्या से भी बातचीत करेंगे। वे अन्य वरिष्ठ नेताओं और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सरकार अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण के नए आंकड़े जारी किए हैं। मसौदा सूची प्रकाशित होने से लेकर नामांकन बंद होने तक लगभग 5 लाख नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं। जिला स्तरीय आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे अधिक वृद्धि उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में देखी गई। हालांकि आयोग के आंकड़ों के अनुसार महिला मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बरजोरा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी भी आज तारकेश्वर, कालना और मौंटेश्वर में प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंत्री समूह की एक बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा और भारत की तैयारियों का आकलन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति अनिश्चित और अस्थिर है, इसलिए भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत भारत समुद्री बीमा पूल के गठन को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय जहाजों और माल को जोखिम भरे समुद्री मार्गों से गुजरते समय भी किफायती बीमा मिलता रहेगा। ईरान ने कहा है कि जब तक ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती तब तक होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमरीका द्वारा जारी नाकाबंदी को युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि जल डमरू मध्य के पास आने वाले किसी भी जहाज को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा और उसे निशाना बनाया जा सकता है। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्तरकाशी जिले में स्थित श्री गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खुल जाएंगे। हमारे संवाददाता के अनुसार गंगोत्री में दोपहर 12:15 बजे और यमुनोत्री में दोपहर 12:35 पर कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में चार धाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।